ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रशेखर शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मणिपुर में स्थिति नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मणिपुर में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों से बातचीत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री ने स्वयं मणिपुर जाकर शांति के प्रयासों का नेतृत्व किया है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर में बाढ़ की गंभीर स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि बाढ़ राहत कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 कंपनियां तैनात हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को संविधान का सबसे बड़ा विरोधी बताया। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की मानसिकता अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का विरोध करने की रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 3रे कार्यकाल के दौरान सरकार के दृष्टिकोण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई सरकार का प्रमुख एजेंडा होगा। श्री मोदी ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं की गति और विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने 3रे कार्यकाल में देश को दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को सामर्थ्यवान बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। विपक्ष के बहिर्गमन पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष में अपने ही सवालों के जवाब सुनने का साहस नहीं है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के आचरण पर निराशा व्यक्त की। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। इससे पहले कल लोकसभा की कार्यवाही श्री मोदी के संबोधन के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। सरकार ने मंत्रिमंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया है। मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 सदस्य होंगे। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह शामिल हैं। मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। मंत्रिमंडल की 10 सदस्यीय संसदीय कार्य समिति की अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। मंत्रिमंडल की राजनीतिक समिति में प्रधानमंत्री सहित 14 सदस्य होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस भगदड़ की घटना में घायल हुए लोगों से आज मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का दौरा कर समीक्षा बैठक भी की। इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे 121 लोगों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग शामिल थे। 31 घायलों का इलाज जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दुर्घटना की जांच के लिए कई विशेष दल बनाए गए हैं। दुर्घटना में मृतकों के नाबालिग बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत शिक्षा सुविधा प्रदान की जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हेमंत सोरेन ने आज सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इससे पहले चंपाई सोरेन ने आज इस्तीफा दे दिया। इस वर्ष 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धनशोधन मामले में गिरफ्तार होने के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए। नारायणपुर के अबूझमाण क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मंगलवार से मुठभेड़ चल रही थी। भारतीय खाद्य निगम ने वर्तमान रबी मौसम के दौरान 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। यह खरीद पिछले वर्ष के 262 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गई है। इससे 22 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। देश में 96,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 5G स्पेक्ट्रम की नई नीलामी शुरू की है। कल से शुरू नीलामी में 8 बैंड शामिल हैं। इसमें प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां 5G मोबाइल सेवाओं के लिए आवश्यक रेडियो फ्रीक्वेंसी प्राप्त करने का प्रयास करेंगी। अगस्त 2022 में हुई पिछली स्पेक्ट्रम नीलामी में सरकार को रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपये मिले थे। 2020 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम 3 दिन से बिरल तूफान में फंसे रहने के बाद बाराबडोस से रवाना हो गई है। टीम कल सुबह नई दिल्ली पहुंचेगी और सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी। बीसीसीआई ने शाम को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक समारोह का आयोजन किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के बीच देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।